दादू की बात सुन अयांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने भी उसे कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितनी चोट देनी चाहिए दादू, पर वो बिल्कुल विचलित नहीं हुई। ये आप शायद जान पाए होंगे। उसमें सहने और ऐसी परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत है, जो फिलहाल मिली शारीरिक मानसिक चोट उसे विचलित नहीं कर पाएगी। इतनी भी कमजोर नहीं है वो, आप यूं ही बच्ची बच्ची कहते हो। ये जानते हुए भी तू उसके साथ वो सब करता है? वो कमजोर नहीं, सह सकती है। ये ना हो कि बेटा वो हिम्मत दिखाते दिखाते एक दिन पूरी तरह कमजोर पड़ जाए, सहते सहते टूट जाए। हद से ज्यादा सहना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और वो बिखर जाता है। फिर हर चीज की एक सीमा होती है, और वो कोई पत्थर नहीं, उसे भी सब कुछ महसूस होता है। दिनकर जी की ये बात सुनते ही अयांश वहां से दूसरी तरफ नजरें घुमा लेता है। ले जाओ दादू को राधे, जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे जानता हूं, जो कहे करके रहता है। मुझे आरवी से मिलना है, बातें भी करनी है, साथ खाना भी खाना है, वो भी उसी के पसंद का मसालेदार। इसलिए तेरी बात मान रहा हूं, वरना तू तो क्या, तेरा बाप मुझे कहीं जाने से नहीं रोक सका। तेरे बाप का भी बाप हूं, पता है ना? ये सुन अयांश का जबड़ा कस गया और वो दिनकर जी की ओर देख बोला, आप उस लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं दादू? मेरे बाप का जिक्र जरूरी नहीं है, गुस्से से। ये सुनते ही दिनकर जी ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से दे मारी। ये देख अयांश फिर दूसरी तरफ देखने लगा। भूलिए मत, आप पोते हैं हमारे, प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आपकी मानते हैं और सुनते हैं आपकी बेटा। और हाँ, जिद और लहजा बदलने का हक सिर्फ आपको ही नहीं है। अंशु बनकर बात करोगे तो सामने दादू मिलेंगे। आप भी जानते हैं हम भी दिनकर मेहरा हैं, अपनी पराए तो आपकी भी नहीं चलने देंगे। ये सुनते ही अयांश ने मुट्ठी बांध ली। तभी दिनकर जी फिर बोल पड़े, मेरे सवाल, मेरा बोलना आपको रास नहीं आ रहा होगा। परेशान हो रहे हैं ना, गुस्सा भी आ रहा है, पर खामोश है। सामने दादू जो हैं, बस आखिरी सवाल, उसके साथ क्या किया है? वो फिर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मुझे वो वापस नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में, जिसने धोखा दिया है हमें। अयांश दिनकर जी की ओर देखते हुए बोला, वो अपनी असली जगह पहुंच चुका है, कभी नहीं आएगा वापस। इस बारे में आप मत सोचिए, उसे जहां होना चाहिए वहीं पहुंचा कर आया हूं। इतना सुन दिनकर जी राधे के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गए और जाते जाते राधे से बोले, आरवी के आते ही बता देना मुझे, वो आ गई। और हाँ, तुम्हें जो बोला है वो बनाने में अभी लग जाओ। नहीं नहीं, एक बार डॉक्टर से पूछ लें क्या दे सकते हैं क्या नहीं। वो तो चटोरी है, पर उसकी तबीयत का भी तो ख्याल रखना है। जी मालिक। अयांश जब तक वो अपने कमरे में नहीं चले गए उनकी ओर देखता रहा। जैसे ही आंखों से ओझल हुए अयांश अपने कमरे में चला आया, रूम बंद किया और शर्ट उतारकर वहीं जमीन पर फेंक दी। तभी उस शर्ट पर लगे खून की ओर देख बोला, चार दिन में तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे दादू पर कि तुम्हारे लिए उन्होंने उस लहजे में मुझसे बात की जो उन्होंने आज तक नहीं अपनाया था। इतनी परवाह, इतना ख्याल तुम्हारा, सोचकर परेशान हो रहा हूँ। जब तुम्हारा सच उनके सामने आएगा तो क्या बीतेगी उन पर? क्या सक्षम का सच जान उन्होंने खुद को संभाल लिया? तुम्हारे बारे में जान वो संभाल पाएंगे? मैं संभाल पाऊंगा उनको? कहीं उन्हें नजर आ रही तुम्हारी चार दिन की मासूमियत हमेशा के लिए उनकी तकलीफ का कारण न बन जाए? उनको लगता है शादी तो कर ली मैंने, पर तुम्हारी मेरी बनती नहीं अभी, इसलिए लड़ते हैं। पर यकीनन जिस दिन तुम्हारा सच बाहर आया ना, तुम्हें पसंद करने वाले भी मुंह फेर लेंगे तुमसे, चाहे फिर वो दादू हों, विनित हों या राधे। पर तुम्हारा सच बताऊं, तुम्हें और सबको या दादू विनित को तकलीफ दूं? जानबूझकर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं? अपना सिर पकड़ते हुए, मैं सच में तुमसे नफरत करता हूं, इतनी नफरत कि दादू विनित का तुम्हारी फिक्र करना भी रास नहीं आ रहा मुझे। और आज तुम्हारे लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि तुम तकलीफ में हो, नहीं फर्क पड़ता मुझे। आज मेरी नफरत और बढ़ गई। मेरे दादू ने ही मेरे साथ अलग तरह से बात नहीं की तुम्हारी वजह से, बल्कि मुझे धोखा देने वाला सक्षम वालिया आज मुझे मारने वाला था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। बट नहीं आरवी, जितनी भोली तुम बनती हो उतनी हो नहीं। ये सच सबके सामने जरूर आएंगे, तुम्हें आईना दिखाएगा अयांश मेहरा। तुमसे तुम्हारे अपने बेशक छीन सकता हूं मैं, पर तुम्हें मेरे अपने नहीं छीनने दूंगा। इतना कह अयांश गुस्सा करते हुए बाथरूम में चला गया और शॉवर के नीचे खामोश खड़ा हो गया। तभी उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा, और ना ही खुद को तुम्हारे सामने कमजोर पड़ने दूंगा, नहीं पड़ने दूंगा, कोई हो या ना हो। मैं वाकिफ हूं तुम्हारी इस झूठी मासूमियत के पीछे की चालाकी और असलियत से। पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा पसरा हुआ था। विनित डॉक्टर नर्स के साथ आरवी को लेकर मेहरा सदन पहुंचा। विनित अपनी गाड़ी में ही आरवी को लेकर आया, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए अयांश ने साफ मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था इस एक्सीडेंट के बारे में मीडिया या किसी को कुछ भी खबर हो। आरवी पीछे की सीट पर नर्स का सहारा लेकर लेटी थी। विनित ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो देखा सामने अयांश खड़ा था,
जिसे देख विनीत हल्का सा मुस्कुराते हुए खुद से ही बड़बड़ाते बोला, लो चैन तो यहां भी नहीं, इंतजार में पलकें बिछाए खड़ा है। तभी पास की सीट पर बैठा डॉक्टर बोला, कुछ कहा आपने? जी, घर आ गए, विनीत बोला और डॉक्टर के साथ खुद भी गाड़ी से बाहर निकल गया। जैसे ही अयांश पास आकर कुछ बोलता, विनीत पीछे की सीट की ओर इशारा करते हुए बोला, पीछे है भाभी। अयांश ने विनीत को घूरा और आरवी पर नजर डाली, जो पीछे की सीट पर आंखें बंद किए लेटी थी, नर्स के कंधे पर जिसने सिर टिका रखा था और जिसे नर्स ने पकड़ा हुआ था। ये देखते ही अयांश का जबड़ा कस गया और वो विनीत पर चिल्लाते हुए बोला, ऐसे कौन लाता है, जानता है ना अभी एक्सीडेंट हुआ है इसका, ये कोई कंफर्टेबल तरीका है लाने का, चोट आई हुई है इसे। तभी डॉक्टर अयांश की ओर आते हुए बोले, मिस्टर मेहरा शांत, पेशेंट के पास इतना चिल्लाना ठीक नहीं है, सर पर चोट आई है और शोर से उन्हें और तकलीफ हो सकती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अयांश ने डॉक्टर की ओर देखा तो वो नजरें झुकाकर थोड़ा पीछे खड़े हो गए। विनीत हामी भरते हुए बोला, हाँ यार देख सो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कैसे लाता, एम्बुलेंस के लिए तो मना किया था ना तूने, तो ऐसे ही लाना पड़ा, वरना सुलाकर लाता। सुलाकर तो इसमें भी ला सकते थे, या जगह कम पड़ गई थी, अयांश विनीत और डॉक्टर दोनों की ओर देख बोला। तो विनीत बोला, बोला था यार पर ये मानी ही नहीं, बोली लेटे लेटे थक गई, मैं ठीक हूँ बैठ कर ही जाऊंगी। डॉक्टर बोले, यस मिस्टर मेहरा, हमें बहुत कहा पर ये जिद करने लगी और आपने जल्द घर आने को कहा तो आना पड़ा, जैसे ही आना चाहती थी। आपको डॉक्टर किसने बनाया, पेशेंट डॉक्टर की सुनते हैं या डॉक्टर पेशेंट की? अयांश के ये कहते ही डॉक्टर खामोश होकर फिर अपनी नजरें झुका लेता है। तभी अयांश विनीत से बोला, तुझे इसकी माननी चाहिए या मेरी, घूरते हुए। विनीत थूक निकलते हुए बोला, आपकी बॉस, सॉरी। और तभी वहां से निकलने में ही भलाई समझ विनीत डॉक्टर से बोला, चलिए हम अंदर देख लेते हैं, सब रेडी है ना, जो भी चीजें चाहिए यहाँ है या नहीं, ये हस्बैंड अपनी वाइफ को ले आएगा अंदर पूरे कंफर्टेबल जोन के साथ, जो अपनी वाइफ के लिए घर को हॉस्पिटल बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। विनीत के ये कहते ही अयांश उससे कुछ बोल पाता कि विनीत डॉक्टर को लेकर अंदर की ओर बढ़ गया। जाते जाते डॉक्टर विनीत से बोला, ये मिस्टर मेहरा ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं क्या हमेशा? विनीत साथ चलते हुए बोला, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आप जानते नहीं, फैमिली डॉक्टर हैं आप, फिर भी कैसा सवाल कर रहे हैं, और हाँ गुस्सा करते हैं, पर आज ये चिल्लाना हमें डांटना गुस्सा नहीं, प्यार परवाह थी अपनी वाइफ के लिए मिस्टर अयांश मेहरा की। सच में प्यार में बड़ा पागलपन होता है, पंडा कितना भी चाह ले खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पाता।
डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आपको प्यार के बारे में काफी कुछ पता है। विनीत बोला, अजी छोड़िए, अभी हम उस बीमारी से दूर हैं, जिस दिन मुझे जकड़े प्यार नाम की बीमारी ने, आप भी इलाज ना कर पाएंगे डॉक्टर साहब, मैं तो बस जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। डॉक्टर बोला, लाइलाज बीमारी का इलाज मैं तो क्या कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता बरखुरदार, वैसे देख तो मैं भी रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है, सोचा नहीं था दिनकर जी के अलावा अयांश मेहरा किसी और के लिए भी इतना परेशान बेचैन हो उठेगा। विनीत मुस्कुराते हुए बोला, बहुत कुछ होने वाला है जो हम तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता है डॉक्टर साहब, बात जब किसी अपने की आती है तो सख्त से सख्त बंदा भी नर्म पड़ जाता है, मौसमी बदलाव देख हवाएं भी तो रुख बदल लेती हैं, यहाँ तो अभी मिजाज बदल रहे हैं, सीने में दिल तो अयांश के भी धड़कता है, चाहे फिलहाल वो पत्थर समान ही क्यों ना हो, बेशक पत्थर पिघले ना पूरी तरह पर उस पर निशान तो पड़ ही जाते हैं, सुना ही होगा आपने। डॉक्टर बोला, बेशक सुना है विनीत, रस्सी के बार बार प्रहार से पत्थर पर भी वो अपनी छाप छोड़ देती है, क्या पता ये शादी मिसेज मेहरा अयांश पर भी अपनी छाप छोड़ दें और जो दिनकर जी से हमने सुना है अयांश के बारे में जो कभी था वो देखने को मिल जाए, बीवी का प्यार डेफिनेटली इनके सख्तपन को कम कर सकता है। विनीत डॉक्टर के कंधे पर हाथ डालते हुए बोला, क्या बात है डॉक्टर, बुखार के पेशेंट देखने की बजाय प्यार के मरीजों का तो इलाज नहीं करने लग गए। डॉक्टर हंसते हुए बोला, नहीं नहीं हम उस बीमारी की नहीं पकड़ते विनीत जिसका इलाज कहीं नहीं, उसकी नब्जी पकड़ में नहीं आती, ये तो दो लोगों के बीच का मामला होता है जहां मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, और भूल गए भाई हम भी शादीशुदा हैं, चाहो या ना चाहो शादी प्यार बीवी ये चीज़ें हालात ही नहीं इंसान को बदलने की भी काबिलियत रखती हैं, तुम अभी नहीं समझोगे वक्त आने पर पता चलेगा। विनीत बोला, ओ अच्छा तो वो उस वक्त पर देखेंगे, फिलहाल अयांश के अंदर पहुंचने से पहले हमें अंदर जाकर सब चेक करना है, सब ठीक है ना, कहीं पता चले हम हॉस्पिटल में मिले, बातों पर कम कदमों की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, और दोनों तेजी से चलते हुए अंदर चले गए। विनीत को डॉक्टर के साथ अंदर आते देख राधे बोला, आप गए उनको लेकर? विनीत ने हाँ में सिर हिलाया। अयांश ला रहा है अंदर, तो राधे खुशी से दिनकर जी के कमरे की ओर बढ़ते हुए बोला, मालिक को अभी जाकर बताते हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, जानकर खुश हो जाएंगे। तभी विनीत की नज़र ऊपर से नीचे आ रहे तीन वार्ड बॉय पर पड़ी, वो डॉक्टर के पास आकर बोले, सब रेडी है, सब सेट कर दिया है, जरूरत का सब सामान रूम में रख दिया है। विनीत उनसे फट से बोला, वेट वेट, आपने ऊपर के रूम में सब सेट किया है? तभी एक वार्ड बॉय बोला, जी सर। दूसरे वार्ड बॉय ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस रूम में। तभी तीसरा भी बोल पड़ा, मिस्टर मेहरा
से पूछा था उन्होंने वहीं सब सेट करने को कहा। विनीत ओके ओके बोलते हुए कहा, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, और सबके साथ ऊपर की ओर बढ़ गए। तभी जाते जाते डॉक्टर विनीत से बोला, ऊपर करूँ? नीचे कंफर्टेबल नहीं रहती वो। विनीत बोला, श, हमसे ज्यादा आयांश को पता है वो कहाँ और कैसे कंफर्टेबल रहेगी। हम कुछ बोलें तो हमारा कंफर्टेबल छीन सकता है, तो कुछ ना कहने में ही भलाई है। आयांश के कमरे के सामने से गुजरते हुए डॉक्टर बोला, वो तो है विनीत, पर अपने कमरे में भी नहीं। विनीत डॉक्टर को थोड़ा घूर कर देखते हुए बोला, लगता है आप भी डॉक्टर नहीं पेशेंट बनने पर तुले हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, ये आयांश का घर है, सब कमरे उसके ही तो हैं, जहाँ मर्जी रहे। ये सुन डॉक्टर कुछ नहीं बोला और सब आरवी के कमरे में चले गए। वहाँ नीचे आयांश खड़ा आरवी को एकटक देख रहा था। आरवी अभी तक सो रही थी। नर्स असमंजस में थी कि कुछ कहे या ना कहे, क्योंकि आयांश कभी भी उसी जगह पर खड़ा था और वो आयांश का चिल्लाना सुन पहले ही डर गई थी। तभी आरवी कसमसाई, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, पर जैसे ही अपने चोट लगे हाथ से अपने दर्द कर रहे सिर को छुआ, उसकी आह निकल पड़ी। आरवी की आह सुनकर आयांश होश में आया और फट से आगे बढ़कर गाड़ी खोली, पर तभी आरवी फिर नर्स के कंधे पर सिर रखकर सो गई। आयांश गाड़ी में झुका और आरवी को कोई मूवमेंट ना करते देख हैरानी से नर्स की ओर देखता है, तो नर्स धीरे से कहती है, मेडिसिन का असर है सर, उसके कारण ही कभी सो रही है कभी उठ रही है। आयांश कुछ नहीं बोला और आरवी की ओर देखते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर की ओर बढ़ गया। पीछे पीछे नर्स भी चली गई। आयांश हॉल में पहुंचा तो दिनकर जी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। उनको देख आयांश के कदम हॉल के बीच ही रुक गए। वो पास आए और आरवी को सोता देख उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ कहने को हुए कि आयांश बोल पड़ा, दवाइयों की वजह से होश में नहीं, जैसे ही होश में आए पूरी तरह से आप मिल लेना और आराम से जितनी भी बातें करनी चाहे कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही दिनकर जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कदम पीछे ले लिए। आयांश आरवी को लेकर ऊपर चला गया। तभी राधे बोला, चिंता मत कीजिए, वो ठीक है, घर आ गए और आयांश बाबा है ना, वो अच्छे से ख्याल रखेंगे। दिनकर जी जाकर सोफे पर बैठते हुए बोले, जानता हूँ मेरा अंशु अच्छे से ख्याल रखना जानता है, पर इस बच्ची का कैसे ख्याल रखेगा ये तो सिर्फ वही जानता है। अच्छा जाओ, तुम सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी मालिक, कह राधे किचन की ओर चला गया। आयांश आरवी को लेकर रूम में पहुंचा तो सब साइड में होकर खड़े हो गए और वार्ड बॉय बाहर चले गए। आयांश ने धीरे से आरवी को बेड पर लेटाया, पर जैसे ही आरवी को सुलाकर पीछे हटने को हुआ, आरवी होश में आ गई। आयांश के साथ सबकी नजर आरवी पर टिक गई। आरवी ने अपने हाथों से आयांश का कोट पकड़ लिया। आयांश आरवी के ऊपर झुका था। तभी आयांश ने आरवी के हाथ से अपना कोट छुड़ाना चाहा, तो आरवी ने आयांश को अपनी तरफ खींच लिया और हथखुली आंखों से उसकी ओर देखते हुए बोली, मैं मिस्टर मेहरा, मुझे आपसे बात करनी है। क्रमशः